एस्तेर का ग्रंथ। प्रस्तावना। मोर्दकाय का स्वप्न। अध्याय एक। महाराजा अर्तजर्कसीस के शासनकाल के दूसरे वर्ष निसान मास के पहले दिन मोर्दकाय ने एक स्वप्न देखा। मोर्दकाय याईर का पुत्र था, याईर शिमई का और शिमई कीश का। वो बेनियामीन कुल का था। वो सूसा नगर में रहने वाला यहूदी था। वो प्रतिष्ठित नागरिक था और राजा के दरबार में सेवक था। वो उन बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेज़र यूदा के राजा यकोन्या के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसका स्वप्न ये था। कोलाहल और हंगामा सुनाई पड़ा, बादलों का गर्जन, भूकंप और पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव। फिर दो बड़े परदार सर्प दिखाई दिए जो एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। वे जोर जोर से फुफकारते थे। उनकी फुफकार सुनते ही सभी राष्ट्रधर्मी राष्ट्र के लोगों से युद्ध करने को तैयार हो गए। वो अंधकारमय और विषादपूर्ण दिन था। पृथ्वी पर विपत्ति और घबराहट, दुख और भारी आतंक। धर्मी राष्ट्र के सभी लोग आने वाली विपत्तियों के कारण भयभीत होकर अपने विनाश की आशंका से ईश्वर की दुहाई देने लगे। उनकी पुकार पर एक छोटे स्रोत से एक बड़ी नदी, एक उमड़ती हुई जलधारा फूट पड़ी। सूर्योदय के साथ प्रकाश हुआ। दीनहीन लोग प्रतिष्ठित किए गए और वे शक्तिशाली लोगों को निगल गए। जगने पर मोर्दकाय उस स्वप्न और ईश्वर की योजनाओं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रात तक उसका अर्थ तरह तरह से समझने का प्रयत्न करता रहा। राजा के विरुद्ध षड्यंत्र। उस समय मोर्दकाय बिक्तान और तेरेश के साथ, जो राजा के कंचुकी और महल रक्षक थे, प्रांगण में विश्राम कर रहा था। उसने उनकी बातचीत सुनी और उनके षड्यंत्रों की छानबीन करने पर उसे ये पता चला कि वे राजा अर्तजर्कसीस का वध करना चाहते हैं। उसने राजा को उनके विषय में ये सूचना दी। राजा ने उन दो कंचुकियों से पूछताछ कराई और उनके दोष स्वीकार करने पर उनका वध कराया। उसने इस घटना का उल्लेख वर्णन ग्रंथ में कराया। स्वयं मोर्दकाय ने भी इसे अपने लिए लिखा। इसके बाद राजा ने मोर्दकाय को राजकीय सेवा में नियुक्त किया और पुरस्कार के रूप में उसे उपहार दिए। हम्मदाता का पुत्र अगागी हामान, जो राजा का प्रिय पात्र था, मोर्दकाय और उसकी जाति के लोगों को उन दो राजकीय कंचुकियों के कारण हानि पहुंचाने का विचार करने लगा। एस्तेर का भाग्योदय। राजकीय भोज। अर्तजर्कसीस के समय की घटना है, जिसने भारतवर्ष की सीमा से इथोपिया की सीमा तक के 127 प्रदेशों पर राज्य किया था। जब वो सूसा के किले में अपने सिंहासन पर विराजमान था, तो उसने अपने शासन के तीसरे वर्ष अपने सब उच्च पदाधिकारियों और दरबारियों, फारस और मेदिया के क्षत्रपों, कुलीनों और प्रदेशों के राज्यपालों को अपने यहां एक महाभोज दिया। वो बहुत दिनों तक, अर्थात 180 दिन तक, उन्हें अपने यशस्वी राज्य की संपत्ति और अपनी महिमा की भव्यता और प्रताप दिखाता रहा। भोज के दिन पूरे हो जाने पर राजा ने सूसा के सब निवासियों, क्या छोटे क्या बड़े, को निमंत्रित किया और आदेश दिया कि राजकीय भवन से लगे बगीचे में 7 दिन के भोज की तैयारी की जाए। वहां चांदी की छड़ों में और संगमरमर के खंभों में बैंगनी रंग की छालटी की डोरियों पर सफेद सूती पर्दे टंगे थे और नीले रंग की झालरें लटक रही थी। तथा लाल सफेद पीले और काले संगमरमर के फर्श पर सोने और चांदी के पलंग रखे गए थे। अतिथि सोने के विभिन्न प्रकार के पात्रों से पान करते थे। राजकीय वैभव के अनुरूप भरपूर अत्युत्तम मदिरा परोसी जा रही थी। कोई पीने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने महल के सब पदाधिकारियों को आज्ञा दे रखी थी कि उन्हें प्रत्येक अतिथि का मन रखना चाहिए। वष्टि द्वारा राजा की आज्ञा का उल्लंघन। रानी वष्टि ने राजा अर्तजरकसीस के महल में स्त्रियों को भी एक भोज दिया। सातवें दिन राजा अर्तजरकसीस मदिरा पीकर आनंद मग्न था। उसने अपने यहां सेवा करने वाले सात कंचुकियों को अर्थात महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबकता, जेतर और कर्कस को आज्ञा दी कि वे रानी वष्टि को राजकीय मुकुट पहने राजा के सामने ले आए। वो सभी लोगों और क्षत्रपों को उसका सौंदर्य दिखाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। परंतु रानी वष्टि ने कंचुकियों द्वारा प्राप्त राजा के आदेश पर आना अस्वीकार कर दिया। इस पर राजा अप्रसन्न हुआ और उसका क्रोध भड़क उठा। राजा द्वारा रानी वष्टि का परित्याग। राजा कानून और न्याय के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर शासन करता था, इसलिए उसने उन विद्वानों को बुलाया जो परंपराओं से परिचित थे और जो उससे सबसे निकट थे, अर्थात कर्ष्णा, शेतार, अदमाता, तर्शीश, मेरेस, मरसना और ममुकान को। वे फारसियों और मेदियों के सात प्रशासक और राजा के दरबारी थे। राज्य में उनका प्रथम स्थान था। उसने उनसे पूछा, रानी वष्टि ने असुर के राजा की आज्ञा का तिरस्कार किया, जिसे राजा ने कंचुकियों द्वारा भेजा था, तो कानून को ध्यान में रखते हुए वष्टि के साथ क्या करना चाहिए? तब ममुकान ने राजा और प्रशासकों के सामने कहा, रानी वष्टि ने केवल राजा के ही विरुद्ध अपराध नहीं किया, बल्कि सब क्षत्रपों और सब लोगों के विरुद्ध भी जो राजा अर्तजरकसीस के सब प्रदेशों में रहते हैं। रानी की ये बात सब स्त्रियों को मालूम हो जाएगी और इससे वे अपने पतियों को ये कहते हुए तुच्छ समझने लगेंगी कि राजा अर्तजरकसीस ने रानी वष्टि को अपने सामने आने की आज्ञा दी थी, लेकिन वो नहीं आई। आज ही फारस और मेदिया की महिलाएं रानी के व्यवहार के संबंध में सुनेंगी और वे राजा के सब क्षत्रपों से इसी प्रकार कहेंगी। इस तरह तिरस्कार और विवाद उत्पन्न होगा। यदि राजा उचित समझें तो राजाज्ञा दी जाए और वो फारसियों और मेदियों के विधि ग्रंथों में लिखी जाए, जिससे वो रद्द न हो सके। अर्थात वष्टि फिर कभी राजा अर्तजरकसीस के सामने न आ सके और उनका राजकीय पद एक अन्य महिला ग्रहण करे जो उनसे अधिक योग्य हो। यदि राजा का ये निर्णय उनके सारे राज्य में, जो बहुत विस्तृत है, सुनाया जाएगा, तो सब पत्नियां अपने अपने पतियों का सम्मान करेंगी, चाहे वे बड़े हों या छोटे। राजा और प्रशासकों को ये परामर्श अच्छा लगा और राजा ने ममुकान के परामर्श के अनुसार कार्य किया। उसने अपने राज्य के सब प्रदेशों में राजकीय आज्ञा की घोषणा कराई। प्रत्येक प्रदेश की भाषा और लिपि में वो ये थी कि प्रत्येक पुरुष अपने घर का स्वामी होगा और उसके यहां रहने वाली सभी स्त्रियां उसके अधीन रहेंगी।